करम गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जो कर्मों का सिलसिला है और कर्मों के फल का सिलसिला है, ये अपार है अर्थात लिमिटलेस है। ये अंतहीन माया है, इसका कोई अंत नहीं है। जीव नहीं छूटन पाए, मैं यानी जीव इससे कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात मैं इस कर्म की गति में फंसा ही रहता हूं। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। और जिस कामना को लेकर ये अपने शरीर का जीव त्याग करता है, इस जीव को नया शरीर उसी कामना की पूर्ति के लिए मिल जाता है। हम जानते हैं कि कामना इतनी गहरी है कि जब सो जाते हैं तब भी ये कामना मेरा पीछा नहीं छोड़ती, स्वप्न के रूप में मुझको दिखाई पड़ती है। वहां भी कर्म करता रहता हूं, फल भोगता रहता हूं और बेचैन होता रहता हूं। ये सबका अपना अनुभव है। संसार की बेचैनी का विश्लेषण तो मैं ठीक ठीक नहीं कर पाता, लेकिन स्वप्न क्योंकि कम समय के लिए होता है, एक छोटी सी घटना घटती है, उसका विश्लेषण मैं यदि चाहूं तो कर सकता हूं। तो स्वप्न में चैन नहीं मिलता है, स्वप्न के संसार में बेचैनी मिलती है। और हम सब इस अनुभव से गुजरते हैं। लेकिन सत्पुरुष जब स्वप्न की बात करते हैं तो स्वप्न हमारे लिए जो कल्पना है, सत्पुरुष की बात करते हैं, ये तेरे जीवन की वास्तविकता है। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। तो किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? जीव के लिए। जीव नहीं छूटन पाए। मैं क्या गलती कर रहा हूं? एक ही गलती है जो मैं अपने साथ ही ब्लंडर कर रहा हूं कि मैं अपने आप को देह करके देख रहा हूं। मैं देह हूं, मैं देह का मालिक हूं, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। मैं देह हूं मैं ये समझ रहा हूं। सत्य ये मेरे बारे में ये है कि मैं देह का मालिक हूं, देह मेरी है। इसलिए मेरा नाम वाणी जो है, या मेरे लिए संबोधन वाणी किस रूप में कर रही है? जीव नहीं छूटने पर। तो सत्पुरुषों के लिए, ऋषियों के लिए, शास्त्रों के लिए मैं जीव हूं, और संसारिक दृष्टि से संसारी लोगों के लिए मैं शरीर हूं। तो ये जो बड़ा भेद है, ये बड़ा कंफ्यूजन लेके जो मैं जी रहा हूं, इसीलिए आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लीजिए, आप बेचैनी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपके बारे में फाइनल ट्रुथ है। तो समस्या दूसरी भी है। वो कहते हैं कि मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। जिस प्रकार की कामना, कई बार हम लोग इसका अर्थ कर लेते हैं कि विशेष प्रकार की इच्छा। कहते हैं कि अंत समय जिसको याद करोगे वही तुमको अगले जन्म में मिल जाएगा। ये कामना नहीं है। ये मंगत जैसी कामना, ये इसको एक, इसके लिए यदि वर्ड यूज करें दूसरा, तो वासना, या यू कह लेंगे इच्छाओं का ग्रुप, इच्छाओं का कलेक्शन, उसको, उसके लिए एक वर्ड कामना यूज किया जाता है। तो जिस प्रकार की कामना तू लेकर जाता है, ऐसा ही रूप अर्थात ऐसी ही देह तुझको प्राप्त हो जाती है जिसमें उस कामना की पूर्ति तेरी होगी। क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत ही यही है कि जिस कमी को लेकर तू यहां से विदा हो रहा है, जिसके कारण पूरे जन्म तू परेशान रहा, दुनिया में तू चैन से क्यों नहीं जी सका? क्योंकि तेरे अंदर जो कामना पल रही थी और वो पूरी नहीं हो पाई, वही तो तुझको बेचैन करेगी। जो कामना पूरी हो गई वो बेचैन नहीं करेगी, वो तो तुझको सुख देगी, लेकिन जो नहीं पूरी हुई वो तुझको बेचैनी देगी। तो यहां से तू सारी बेचैनी वाली इच्छाएं, जो तेरी कमी रह गई इस जन्म में, वो तू पूरी करने के लिए अगला शरीर तुझको दिया जाता है, और वहां वो कामनाएं तेरी जरूर पूरी होगी, क्योंकि दिया ही वो शरीर इसलिए गया है तेरी कामना पूर्ति के लिए। इसलिए महाजी समतावलास में भी लिख रहे हैं जीवन सार सिद्धांत में पहला ही प्रश्न कि जीव को देह क्यों मिली, उसके उत्तर में लिख रहे हैं कामना पूर्ति के लिए या ख्वाहिश पूर्ति के लिए। अब बताइए मेरा जो वर्तमान जन्म है, मुझे नहीं पता इस विज्ञान का, मेरा वर्तमान जन्म ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के हाथ में है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं इस जीवन जीने के लिए। यदि कोई कहे मैं सुसाइड तो कर सकता हूं, हां कर सकते हो, लेकिन तू सुसाइड में सक्सेसफुल तभी होगा जब तेरा प्रारब्ध तुझको परमिट करेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया, मैं स्वतंत्र मर सकता हूं, लेकिन तुझको पता नहीं, तुझको ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है, वो एक्शन तू ईश्वर के अधीन होकर ही कर रहा है, ये मुझको पता नहीं। इसलिए पूरा जन्म का कंट्रोल ईश्वर करता है, उसके हाथ में है। मैं भी इस देह में हूं क्योंकि मेरा नाम है जीव, ईश्वर भी इस देह में मौजूद है क्योंकि उसका नाम है चेतन परमेश्वर। वो खाली परमेश्वर नहीं है, वो चेतन है, वो जानता है। तो उसकी चेतना के कारण ही मेरी बुद्धि में भी चेतना है। और महाराज कहते हैं प्रेमी समतावलास में कि बुद्धि यानी जीव, जो बुद्धि निर्णय करती है, जो बुद्धि जानती है। तो ये दोनों जो लक्षण है, दोनों जो गुण है, जानना और निर्णय करना, ये दोनों ही ईश्वर के कारण है। क्योंकि ईश्वर तुझको कभी नहीं छोड़ता, ईश्वर और जीव कभी अलग हो ही नहीं सकते, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। इसलिए जीव भी अंतर्यामी है और प्रभु भी अंतर्यामी है। अब बताइए जो प्रभु मेरे मालिक है, मेरे संगी है, और मैं शरीर को अपना स्वरूप समझकर सारे संसार में सारा जीवन में बेचैन होता रहता हूं, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से, और जो प्रभु आनंद स्वरूप है, जीवन रूप है, उसके बिना तो देह में जीवन ही नहीं। जीवनम सर्वभूतेषु, गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, मैं सारे प्राणियों में जीवन हूं। तो मेरी देह के अंदर जो जीवन शक्ति है वो प्रभु है। भूतानाम अस्मि चेतना, आगे कह रहे हैं कि सारे प्राणियों के अंदर चेतना मैं हूं। तो मैं जो चेतना है, चेतन का मतलब एक होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ये बिजली वाला प्रकाश नहीं, सूर्य वाला प्रकाश नहीं, जो आपको जानने की शक्ति देता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम चेतना कहते हैं। बाहर यदि लाइट जल भी रही है, मेरे अंदर चेतना ना हो, क्या वो प्रकाश मुझे दिखाई पड़ेगा? लेकिन मेरे अंदर जब तक वो चेतन प्रकाश है, वो चेतना है, तब ये बाहर का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो इस बाहर के प्रकाश को, इस सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित कौन कर रहा है? वो चेतना प्रकाश कर रही है और ईश्वर चेतन रूप है। इसीलिए वाणी मेरे लिए प्रभु प्रकट कर रहे हैं। वाणी में क्या प्रभु प्रकट कर रहे हैं? अपना चेतन रूप पहचान। तुझको मनुष्य बनाया है इसलिए कि तू अपने चेतन रूप की पहचान कर। तू देह नहीं है जो कभी भी मर सकती है, कभी भी सड़ सकती है, कभी भी रोगी हो सकती है। इतनी टेम्परेरी चीज तो नहीं है, तू परमानेंट चीज है। तू वाणी कह रही कि अपना चेतन रूप पहचान। क्यों पहचान? सकल कर्म की होवे हान, सारे कर्म के बवाल से, सारे कर्म के झंझट से तू छूट जाए। और कर्म का जो फल है, जैसे अभी हम वाणी उच्चारण कर रहे थे, वो तो बेचैनी ही देता है क्योंकि बदलता रहता है, कर्म बदलते रहते हैं, उसके फल बदलते रहते हैं। सुख मिल भी गया पुण्य कर्म का फल, वो भी कुछ देर में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना आपने कर्म किया है पुण्य कर्म, उतना सुख मिल जाएगा, फिर दुख आ जाएगा। तो दिन और रात की तरह से सारे जीवन भर मेरे जो है मेरे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, और मैं सुख की कामना करता हूं, सुख की तैयारी करता हूं और दुख भोगता रहता हूं। सुख के लिए जो कर्म करते हो वो तो दुखी है ना, प्लानिंग करते हो, उसके लिए साधन इकट्ठे करते हो, पुरुषार्थ करते हो, तो कर्म करने में तो सुख नहीं है, कर्म करने में दुख है, उसके फल में सुख आप अनुभव करते हो। वो कितना टेम्पररी होता है, कितनी देर के लिए होता है, और सुख वो खत्म होता है, फिर दुख आपका सामने आ जाता है। तो इसीलिए अनंत कर्म करने के पश्चात भी मनुष्य संसार में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। दिन रात की तरह से उसके जीवन में सुख दुख आते रहेंगे। दुख मैं चाहता नहीं, केवल सुख चाहता हूं, वो कभी तुझे मिल नहीं सकता, वो दिन देखने को जीवन में आएगा ही नहीं। ना आज तक जो मनुष्य जब से धरती पर आया ऐसा दिन उसके जीवन में नहीं आया कि वो केवल सुखी हो जाए। तो अब बताइए, पूरा जगत, सारी जगत की रचना, इसको द्वंद्व रूप कहते हैं। द्वंद्व रूप है, इसमें सुख दुख जैसे द्वंद्व है, बनना बिगड़ना द्वंद्व है, श्वास रोग द्वंद्व है, जवानी बुढ़ापा द्वंद्व है, जन्म होना मरना द्वंद्व है। तो जब द्वंद्व रूप जगत है तो बताइए मैं उसमें से एक सिलेक्ट करता हूं फिर मैं बेचैन रहूंगा या चैन से जी पाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए। तेरा जब जन्म होता है, जब ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाए, तुझको जब ये देह तेरी जाएगी तो नया रूप अर्थात नई देह जब तुझको मिलेगी तब उसका क्या सिद्धांत होगा कि जिन कामनाओं को लेकर तू यहां से शरीर का त्याग किया है वो सारी कामनाएं तेरी अगले जन्म में पूरी होंगी। लेकिन विचार कर, जो कामना तुझको यहां परेशान कर रही है या कर रही थी वो अगले जन्म में पूरी होंगी, वो बचपन से ही ऐसी परिस्थितियां मिलेगी वो सारी कामनाएं तेरी वहां पूरी होंगी, ये सिद्धांत है, उपनिषद में भी आया है सिद्धांत। तो विचार करो, मान लिया वर्तमान जन्म है, मेरी कामना यहां पर कुछ पूरी हो रही है और ये कामनाएं जो पूरी हो रही है इसकी कामना मेरे अंदर नहीं है क्योंकि पूरी हो रही है वो। अब जो कामनाएं मेरे अंदर पल रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही है वो पेंडिंग हो गई। सब कामनाएं तो मेरे हर दिन पैदा होते हैं विशेष प्रकार की, और जीवन जब तक मृत्यु नहीं होती वो पैदा होती रहती है। वो सारी कामनाएं जो पूरी नहीं हुई हैं वो कलेक्ट हो गई नहीं होगी आपके मन के अंदर, उसके संस्कार, उसका उसके कारण स्वभाव, वो सारा उसके अंदर लगातार इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है। और जो पूर्व जन्म में कामना थी वो इस जन्म में पूरी बचपन से ही पूरी हो रही है, उसका विधान ही यही है। तो जो पूरी हो रही है उसकी तो मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है क्योंकि पूरी हो रही है। मेरे अंदर कामना वो पल रही है जो मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। और वर्तमान जन्म का सिद्धांत यह है कि जो पूरी जन्म में जितनी कामनाएं मैंने करी थी जो पूरी नहीं हो पाई इस जन्म में मुझे पूर्ण मिलेंगी वो, तो आपके अंदर इच्छा कैसे होगी इसकी, होगी नहीं। तो इसीलिए एक सत्संग पहले भी हुआ था उपनिषद पर, तो वहां सिद्धांत था कि जीवन दुख रूप कैसे, जिन्होंने वेबसाइट पर सुना होगा या आश्रम में सुना होगा उसको सुनकर देखे, फिर वहां भी यही बात है कि जीवन दुख रूप कैसे, क्योंकि वर्तमान जन्म में जो तेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं इसका सिद्धांत कहां से आ रहा है कि तेरे पूर्व जन्म से आ रहा है, कि वहां जो प्यास रह गई थी ईश्वर ने तुझको ऐसा शरीर दिया ऐसी परिस्थितियां दी कि इस जन्म में वो सारी तेरी पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुझको तो नई नई कामनाएं मेरे अंदर पैदा होती रहती हैं, अब ये जो कामनाएं पैदा हो रही हैं ये तेरी पूरी नहीं होंगी यदि तेरे विधान में नहीं है, तेरे प्रारब्ध में नहीं है। तो हर जन्म आपका द्वंद्व रूप इसलिए है कि एक साइड इसकी वो है जो पूर्व जन्म से कामना लेके आया वो सारी की सारी, क्योंकि ईश्वर ने विधान बनाया है ये कि वर्तमान तेरा शरीर और तेरे चारों तरफ का संसार जो इकट्ठा होगा वो सारी ऐसी परिस्थितियां देगा वो कि तेरी जो पेंडिंग कामनाएं थी सारी इस जन्म में पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन तेरी नई नई इच्छाएं भी तो पैदा होंगी। वो जो पेंडिंग रह जाएंगी वो तेरी वासना या कामना अंतिम वक्त में तेरे मन में स्थिर रहेगी, संस्कार रूप में कहिए या इंप्रेशन के रूप में कहिए। अब बताइए कि जो मैं प्यासा रहा, जो मेरे अंदर कामनाएं इस जन्म में पैदा हुई और जो पूर्ण नहीं हो पाई, ये प्यास मेरी अगले जन्म में फिर ईश्वर पूरी कर देगा। तो विचार करने की बात यह है कि मैं तो हर जन्म में प्यासा हूं, मेरी प्यास हर जन्म में वैसी की वैसी ही भरी हुई है। तो ये विज्ञान सत्पुरुष समझा रहे हैं, देखो उपनिषद काल से वैदिक काल से लेकर समझा रहे हैं और आज भी ये बात आ रही है, लेकिन हम इसको वाणी को ऐसे तो समझते नहीं क्योंकि शास्त्र पढ़ने में मेहनत नहीं करते। ये विज्ञान है, गहरा, बड़ा गहरा विज्ञान है, कौन सीखता है इसको, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बात खत्म हो। इसलिए हमारी बुद्धि का वो निर्णय हो ही नहीं पाता जो निर्णय शास्त्र दे रहे हैं। मेरा जो सांसारिक बुद्धि है उसमें जो निर्णय होते हैं जो लोक में दिखाई पड़ता है जैसी सब बातें करते हैं वैसी मैं भी बातें करता हूं। तो मेरे जीवन के बारे में सत्य कुछ और है और समझ रहा हूं मैं कुछ और। जैसे ये वाणी भी कह रही है कि कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए, लेकिन वाणी पढ़ूंगा तो जीव का मतलब मनुष्य समझ लेता हूं। मनुष्य का मतलब है यह विशेष प्रकार की देह जो है ये मनुष्य है, जबकि सत्य मेरे बारे में यह है कि देह अलग है और मैं अलग हूं, जीव अलग है देह अलग है, देह नष्ट होने वाली चीज है और जीव बच जाने वाली चीज है, जीव के अंदर जीवन है, जीव के अंदर चेतना है और यह ईश्वर के संग है, तो जीव की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ईश्वर के संग है वो। देह जला दी जाती है, देह नष्ट हो जाती है और इस देह के लिए मैं वहम में आके सारे कर्म करता हूं, सारी प्लानिंग करता हूं, सारा मोह इकट्ठा करता हूं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा किसका, मैं यानी देह। देह जो जड़ चीज है, आप बताइए, हम सब जानते हैं जिन्होंने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है इस बात को तो जानते ही है वो कि देह में जो हड्डी है वो मृत है, जिंदा वस्तु नहीं है वो। देह में जो खून है वो मृत है, वो जिंदा वस्तु नहीं है। देह में जो मांस है वो मृत है, वो जिंदा वस्तु नहीं है। लेकिन ये किसी के कारण एक्टिव है, किसी के कारण इसकी ग्रोथ भी हो रही है, तो जिसके कारण ग्रोथ हो रही है वो जीवन शक्ति है, वो चेतन शक्ति है, उसका नाम है ईश्वर। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी का मैं अंश हूं। जैसे अग्नि जल रही है, अग्नि से कोई एक पतंगा निकले जिसको स्पार्क कहते हैं, तो अग्नि ही होगा ना वो, लेकिन अग्नि से अलग होते ही वो स्पार्क बुझ जाता, मर जाता है। तो जीव यदि ईश्वर से अलग हो जाए तो ये भी मर जाएगा फिर, लेकिन ये मरता क्यों नहीं, क्योंकि ईश्वर इसको छोड़ता ही नहीं है। जिस समय मेरी देह की मौत होती है ईश्वर मुझको नहीं छोड़ता, मैं ईश्वर के संग ही रहता। अब बताइए, जो ईश्वर जीवन रूप है, जो मेरे जिस्म की भी जान है और जिसमें चेतना है, जिसके कारण मैं जानता हूं दुनिया को, अपनी देह को, तो उस चेतन शक्ति को मैं छोड़े बैठा हुआ हूं और इस मृत शक्ति को मैं पकड़े बैठा हुआ हूं। ईश्वर को मैंने अपना स्वरूप नहीं समझा, इस देह को अपना स्वरूप समझ लिया, इसलिए वाणी फिर याद दिला रही है, अपना चेतन रूप पहचान सकल कर्म की होवे हान। तो इस द्वंद के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, सारा कर्म तेरा खत्म हो जाएगा। इसको हम स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं, या उस स्थिति को परम आनंद कहते हैं, उसी स्थिति को हम अपने स्वरूप में स्थित होना कहते हैं। तो अब बताइए कि मैंने अपने स्वरूप को जानने के बजाय संसार को जानने की कोशिश करी, यहां मैंने रिसर्च की और अज्ञान लेकर, वासना का एक बुलंदा लेकर मैं यहां संसार से विदा हो गया। यदि मर जाता तो कोई बात नहीं थी, खत्म हो गई बात, लेकिन मेरे बारे में सत्य यह है कि मैं मरता नहीं, मैं बच जाता हूं। देह जिसको अपना स्वरूप समझता हूं वो राख हो जाती है, लोग जला देते हैं उसको, और सारी बातें मैं, कोई भी कर्मकांड जब मौत का होता है किसी भी घर में, तो पंडित भी बताता है, शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र का भी उदाहरण देता है, वो यही कहता है कि भाई तू मरा नहीं है, तेरा जो पिता मरा, तेरी माँ जो मरी, वो मरी नहीं है, वो दूसरे लोक में है। तू चाहे तो उसके लिए कुछ कर सकता है, लेकिन सत्य यह नहीं है, तू उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, जो करना है ईश्वर ने करना है। ये विधान ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि ईश्वर ने जिस विधान को वाणी के रूप में प्रकट किया, जिस विधान को समता विलास के रूप में प्रकट किया, जिस विधान को वेदों के रूप में प्रकट किया, ऋषियों के जीवन से उन्होंने प्रकट किया, तो मैंने उस विधान पर विश्वास करना सीखना था। यहां आके पता लगता है कि सत्संग जीवन में क्यों जरूरी है। मानव जीवन छोड़कर मैं पशु जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ये तो वाणी खुद ही कह रही, बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो खोई। मैं बड़ी डिग्रियां हासिल कर सकता हूं, बड़ा पैसा भी कमा सकता हूं, दुनिया में संसार में नाम भी कमा सकता हूं, लेकिन वाणी मुझको पशु कह रही, क्योंकि ये विवेक मेरे अंदर नहीं है जो वाणी विवेक प्रकट कर रही है, मेरे से कहां भी देगा ये, सारी जिंदगी देह से ऊपर मेरी सोची नहीं कोई भी, जो मैं हूं नहीं, जो नाशवान चीज है उसको अपना स्वरूप समझे बैठा हुआ हूं, और जो मेरा स्वरूप है जो नाश नहीं होता उसके प्रति गाफिल हूं। तो ऐसी भयंकर मिस्टेक करके मैं अपनी प्रगति चाहता हूं संसार में आकर, इसीलिए प्रगति मेरी इच्छा के अनुसार हो भी जाए, मनचाही क्वालिफिकेशन मिल जाए, मनचाही पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन मानसिक बेचैनी लेकर जो आप जीते हो उससे कभी मुक्त नहीं हो सकते। सत्पुरुषों की बात गलत नहीं हो सकती, मेरी बुद्धि का एक वहम बैठा हुआ है मैं बड़ा काबिल हूं, लेकिन जब वाणी को आईना बनाऊं, उसे अपनी शक्ल देखूं, तब पता लगता है कि फैक्ट मेरे बारे में है कि मुझ जैसा मूर्ख इंसान संसार में नहीं है। यदि तू केवल संसारी है तो तू मूर्ख इंसान, जिसके अंदर आध्यात्मिक बुद्धि है तो सत्पुरुष को जिससे किसी ने गुरु रूप में धारण किया है उसके ज्ञान को वो सीखता है, उसके अनुसार अमल करने की कोशिश करता है, वहां से निर्णय होता है कि मेरी बुद्धि में होश है और मैं मानव जीवन ठीक व्यतीत कर रहा हूं। इसलिए चाहे वो एक दोहा क्यों ना हो, वो उसके ज्ञान में कितनी गहराई होती है, इसलिए इसको समझने के लिए हमको पूरा जन्म लग ही जाता है। तो जैसे जैसे हम इस अध्यात्म विद्या के प्रति अपना शौक सीखने का बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारी बुद्धि में ये चीजें आती रहती हैं, हम सीखते रहते हैं और अपने जन्म को सुधार कर विदा होते हैं। ओम ब्रह्म।